जय ढवला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 11
ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंता नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वच्चायाणं नमो लोहे सर्वसाऊणं अनुभागभागमेतो विजथदोषस्य संभवो नत्ति कम्पणमियजिननाहम्
यह श्री बीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुल तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा कुशल आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। नववी पुस्तक अर्थ आवाज है नहीं इधर इधर लगते तो ले। नववी पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 72 पर आ गए हैं। देखते हुए हूँ यहाँ पर स्पर्शन की बात अपनी चल रही है। नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही है। हमने भंग देखे उसके उसके बाद भागा भाग विशेषार्थ में भागा भाग परिणाम परिमाण क्षेत्र और स्पर्शन देख रहे थे। उसमें से भी स्पर्शन की बात हो रही है तो स्पर्शन दो प्रकार का है जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है निर्देश दो प्रकार का है ओह और आदेश। ओह से 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग त्रसन आली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग असंख्यातवा भाग उनका स्वस्थान स्वस्थान है। आज आवाज है ही नहीं है वो बात ये चालू है।
हेलो हेलो
हेलो
हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हाँ दर्शन नाले के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग
Hello.
और सब लोग का स्पर्शन किया है। आवाज आ रही है तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों ने सब लोग का स्पर्शन किया है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग उनका रहने का ठिकाना क्योंकि असंख्यात ही जीव करते हैं। त्रसन आली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और सब लोक का स्पर्शन किया है। अतीत काल की अपेक्षा सब लोक का स्पर्शन किया क्योंकि उसकी उद्वेलना वाले जीव कहीं ना कहीं पूरे लोक में थे। एक इंद्रियों में भी उद्वेलना वाले थे। वर्तमान में वो जीव कम है इसलिए उसको असंख्यातवा भाग कहा था परंतु अतीत काल की अपेक्षा पूरा लोक घटित होता है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट करने वाले कौन है सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट हाँ क्षपणा वाले हैं तो वो तो हमेशा लोक के असंख्या विभाग में ही पाए जाएंगे क्योंकि मनुष्य ही करते हैं। यह ओघ प्ररूपणा है। इसी प्रकार विचार कर आदेश से जान लेना चाहिए। उसके बाद अभी जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व और मध्य की आठ कषायों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों ने सब लोक का स्पर्शन किया है क्योंकि वे एक इंद्रियों में पाए जाते हैं और एक इंद्रियों से मरकर अन्य जीवों में भी पाए जाते हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है क्योंकि वो मात्र क्षपणा में होते हैं। अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवन ने लोक के असंख्यात भाग ये वर्तमान का त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग बिहार का और सब लोक क्षेत्र स्पर्श किया है। ये अतीत काल की अपेक्षा। शेष प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग क्योंकि क्षपणा वाले हैं तथा अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों ने सब लोक का स्पर्शन किया है। यह ओघ प्ररूपणा है। इसी प्रकार विचार कर आदेश से जान लेना चाहिए। नाना जीवे ही कालो। अब नाना जीवों की अपेक्षा काल का कथन करते हैं। पहले हमने एक जीव की अपेक्षा देखा था, अब नाना जीवों की अपेक्षा देखते हैं। यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्तस्य उक्कस्य अनुभाग संकामया केवचिरम कालादो होती। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्येन अंतोमुहूर्तम्। जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। शंका, वह कैसे? तो 7-8 या बहुत जीव उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने के बाद सबसे जघन्य अंतर्मुहूर्त काल तक उसके संक्रामक हुए। बाद में कांडक घातवश अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक हो गए। इस प्रकार सूत्र में निर्दिष्ट जघन्य काल प्राप्त होता है। उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने के बाद नियम से वो अंतर्मुहूर्त तक तो जघन्य हो ही जाता है अंतर्मुहूर्त में, फिर भी अतिशीघ्र करने के लिए यहाँ कांडक घात की बात की। वो भी अंतर्मुहूर्त, ये तो जघन्य काल। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल भी अंतर्मूर्ति होता है। तो अनेक जीव एक साथ वहां आए तो उनका भी जघन्य काल अंतर्मूर्त घटित होगा। उक्कस्य न पलिदोवमस्य असंख्य यदि भागो। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात्वे तरे गया भाग प्रमाण है। क्योंकि हमने देखा एक जीव के लिए अंतर्मुहूर्त यथा एक जीव के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक संबंधी अंतर्मुहूर्त के ऊपर रफार अंतर्मुहूर्त काल को स्थापित कर, यानी एक जीव के लिए एक अंतर्मुहूर्त, उसे नाना जीवन संबंधी उत्कृष्ट काल को प्राप्त करने के लिए पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण शलाकाओं से गुणित करना चाहिए। इस प्रकार करने से प्रकृत उत्कृष्ट काल उत्पन्न होता है। यहाँ अवली का असंख्यात भाग नहीं कहा, पल्ले का असंख्यात भाग कहा, क्योंकि उत्कृष्ट संक्रामक अधिक से अधिक कितने होंगे तो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते चाहिए। क्योंकि अंतर्मुहूर्त में कोई ना कोई करते रहे उसकी अपेक्षा बात है। अनुकस्य अनुभाग संकामया संवद्धा। उससे उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों का काल सर्वदा है, क्योंकि सर्वदा अविच्छिन्न प्रवाह रूप से मिथ्यात्व के क्या बराबर है क्या श्रेया हुआ ना मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों का अवस्थान देखा जाता है। उत्कृष्ट तो कभी कभी होगा किसी जीव को, परंतु अनुत्कृष्ट तो सभी के होगा ही होगा, क्योंकि हमने देखा ना जघन्य और उत्कृष्ट में, जघन्य तो सदाकाल रहेगा क्योंकि एक इंद्रियों में होता है, हाँ, परंतु यहाँ अनुत्कृष्ट की बात चल रही है, वो तो हमेशा ही रहेंगे। एवं शेषानम कम्मानम, मिल गया ना 74 पृष्ठ पर पढ़ रहे। इसी प्रकार शेष कर्मों का काल जानना चाहिए। जिस प्रकार मिथ्यात्व के प्रकृत काल का निर्देश किया है, उसी प्रकार शेष कर्मों का भी करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है, यह सामान्य निर्देश है। इससे सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के प्रकृत काल के निर्देश में अति प्रसंग प्राप्त होने पर वहां काल की विशेषता का कथन करने के लिए यह सूत्र कहते हैं। क्योंकि हमने देखा है सम्यक जो कि सम्यक मिथ्यात्व की जिसकी सत्ता है, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, वो तो उत्कृष्ट अनुभव वाला है, एक से क्षपणा में अनुत्कृष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ अन्य प्रकृतियों में का क्या कहा, जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट पल्य का संख्या तो, परंतु सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी हमेशा है, सम्यक दृष्टि भी हमेशा है, तो उत्कृष्ट भी हमेशा ही रहेगा, तो सदाकाल कहेंगे। इसलिए कहते नवरी सम्मत सम्मा मिच्छत्तानम उपकस्य अनुभाग संकामया सौवद्धा, इतनी विशेषता है। ये सूत्र का चिन्ह नहीं लगाया उन्होंने, फ्लावर का, इतनी विशेषता है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों का काल सर्वदा है। यानी अन्य कर्मों में उल्टा, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसका अनुत्कृष्ट
कभी
उसमें अंतर भी हो सकता है, कभी कभी होता है। अनुपकस्य अनुभाग संकामया केवचिरम कालादो होती है, उनके ने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्न उपकस्येन अंतोमोत्तम, जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। क्यों जघन्य काल अंतर्मूर्त कैसा हुआ,
कंडकघात का कितना काल है, एक बार उत्कृष्ट
से अनुत्कृष्ट, जब क्षपणा शुरू हुई तो उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो गया, पहले कंडकघात में ही, फिर जो मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व की और समय प्रकृति की क्षपणा के काल में उसका अनुत्कृष्ट ही रहा, फिर नष्ट हो गया, क्योंकि जघन्य को भी अनुत्कृष्ट ही कहेंगे, तो उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट होते होते अंतर्मूर्त तो रहेगा ही एक जीव की अपेक्षा। तो एट ए टाइम एक या अनेक जीवों ने शुरू किया तो जघन्य काल अंतर्मूर्त, और एक के बाद एक ने अगर क्षपणा की तो भी संख्यात जीव ही करेंगे, तो वो भी अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि दर्शन मौखिक क्षपणा के सिवा अन्यत्र यह काल नहीं पाया जाता। इस प्रकार ओह प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से सर्वत्र अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। अब कहते हैं एतो जघन्य कालो, अब जघन्य काल को कहते हैं, यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्त अट्ठकसायाणम जघन्य अनुभाग संकामया केवचिरम कालादो होंती, मिथ्यात्व और आठ कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। तो कहते हैं सौवद्धा, यानी सब काल है, क्योंकि एक इंद्रिय करने वाले बहुत है, अनंत है, तो कोई ना कोई तो करता रहेगा ही, क्योंकि हत समुत्पत्तिक रूप जघन्य सत्कर्म से परिणत हुए सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों का तीनों ही कालों में विच्छेद नहीं पाया जाता। यानी नए नए जीव उसमें चले जाएंगे, अत समुत्पत्ति की क्रिया भी चलती रहेगी, और वो जघन्य वाले भी जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। सम्मत्त चदुसंजलन पुरिस वेदानम जहन अनुभाग संकामया केवचिरम कालादो होती। सम्यक्त्व चार संज्वलन और पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन एय समो जघन्य काल एक समय है, क्योंकि हमने देखा है सम्यक्त्व का अवली प्लस एक समय बाकी है, तभी चार संज्वलनों में तीन संज्वलन का जब नवक समय प्रबद्ध उसकी जब अंतिम फाली जाती है तब उसका है, और लोभ में तो एक आवली प्लस एक समय बाकी, तो उसका जघन्य का संक्रामक है, वो एक ही समय के लिए है। तो एट ए टाइम एक या अधिक जीव वो जघन्य कर रहे तो उसका एक समय होगा, क्योंकि दर्शन मुखी क्षपणा में एक समय अधिक एक आवली काल रहने पर एक समय के लिए सम्यक्त्व का, सकषाय अवस्था में सकषाय अवस्था ने
सूक्ष्म
संप्राय एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने पर एक समय के लिए संज्वलन लोभ का तथा अपने अपने नवक बंध की अंतिम फाली की संक्रमण अवस्था में शेष प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग संक्रम पाया जाता है। इसलिए जघन्य काल एक समय प्राप्त होने में बाधा नहीं आती। उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, ऊपर नहीं पढ़ा ना, उक्कस्य न संखेज्जा समया, उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, क्योंकि संख्यात बार किए गए अनुसंधानवश उक्त काल प्राप्त हो जाता है। अनुसंधान कंटिन्यू किसी एक जीव ने किया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तो कितने करेंगे तो संख्याती जीव करेंगे, तो समय उसके संख्याती होंगे। सम्मामिच्छत्त अठनो कसायाणम जहन अनुभाग संकामया केवचिरम कालादो होंती। सम्यक मिथ्यात्व और आठ नौ कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्य उपकस्सेन अंतोमूर्तम, जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सम्यक मिथ्यात्व का देखा ना हमने, उसके अंतिम कांडक घात हुआ, जघन्य से तो उनका अपने अपने अंतिम अनुभाग कांडक का काल लेना चाहिए, यानी एक जीव के लिए इतना होता है, तथा उत्कृष्ट से वही काल छाया के दृष्टांत द्वारा अनुसंधान करते हुए ग्रहण करना चाहिए।
छाया
का दृष्टांत क्या है? यानी एक के बाद ऐसा ले लेना। यानी संज्वलन का एक समय देखा हमने, आठ कषायों का अंतर्मूर्त, अब अनंतानुबंधी की बात करेंगे। अनंतानुबंधिनम जहन्न अनुभाग संकामया केवचिरम कालादो होंती। अनंतानुबंधियों के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। यह कब होता है जघन्य, याद है ना मंजूबेन? हाँ, विसंयोजना के बाद फिर जब संयोजना करता है, पहले समय में जघन्य अनुभाग बांधता है और आवली के बाद उसका संक्रामक होता है, एक ही समय के लिए एक जीव। अब यहाँ नाना जीव एट ए टाइम करेंगे तो एक समय करेंगे, और एक के बाद एक करेंगे तो बताएंगे अभी। हाँ, आवली का संख्या तो बात। तो जघन्य न ये समय, जघन्य काल एक समय है, क्योंकि विसंयोजना पूर्वक संयोजना होने के प्रथम समय में जघन्य परिणाम से बंध को प्राप्त हुए जघन्य अनुभाग को एक आवली के बाद एक समय तक संक्रमा कर दूसरे समय में जो जीव अजघन्य अनुभाग के संक्रम रूप से परिणत हो जाते, एक समय के लिए जघन्य है दूसरे समय में अजघन्य हो जाते हैं, उनके जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण उपकस न आवलिया असंख्य जदि भागो उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही निरंतर उपक्रमण वार यहाँ पर संभव देखे जाते हैं। ये याद है निरंतर उपक्रमण काल किसको कहेंगे?
जन्म लेने की
एक के बाद एक के बाद एक के बाद, यहाँ जन्म नहीं समझना, यहाँ तो विसर्जना से संयोजना करने वाले जी समझना। एदेसिम कम्मानम अजहन्न अनुभाग संकामया केवशीरम कालादो होती है। ये सबका जघन्य पहले बताया, अभी अजघन्य का काल पूछ रहे हैं। यह सूत्र सुगम है, यते सवद्धा सर्वदा है। यह सूत्र भी सुगम है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से सब नारकी सब तीर्यंच मनुष्य पर्याप्त सामान्य देव और नौ ग्रहवेग तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। मनुष्यों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। पूरा कांडक घात होता है अंतिम, तभी उसका जघन्य है। अजगन्य अनुभाग संक्रामकों का काल सर्वदा है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में मिथ्यात और आठ कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। कैसे लेंगे?
मिथ्यात्व तो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त में होता है ना।
हाँ, वहां से आया हुआ ही लेना है जी, परंतु यहाँ अजगन्यों की बात चल रही है, यहाँ जगन्य क्यों लिखा?
ये अलग है, इसकी उनको बताया
आदेश में, इसलिए अजगन्य अनुभाग के संक्रामकों का काल सर्वदा है। शेष भंग मनुष्यों के समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियों में पुरुष वेद का भंग छह नौकषायों के समान है, यानी वो अंतर्मूर्त तक होगा, यानी उसका नवक पुरुष वेद के सहित चढ़ने वाले का
लास्ट कंडक
नवक बंध वाला जब होता है तो उसके लास्ट समय में होता है, और इसके लिए पूरा कांडक प्रमाण होगा। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। उसका जघन्य हमने देखा था, अभी विसर्जना करने वाले को होगा। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ, मनुष्यों में जिस प्रकार स्त्रीवेद और नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय बन जाता है। पहले जो हमने अंतर्मूर देखा था तो एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर देखा था ना, वहां पर अंतिम कांडक में, तो यहाँ क्या कह रहे हैं?
ये अनुदिश से सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जघन्य का काल कितना अंतर्मूर्त होगा मिनिमम?
नहीं नहीं,
क्योंकि लास्ट कांडक में होगा कि उसके पश्चात होगा,
जो अभी तो
सर्वदा कर रहा है,
सर्वदा हो गया ना, फिर नाना जीवन की अपेक्षा चल रही ना बात।
हाँ, सर्वदा हो गया।
नाना जीवन की अपेक्षा अगर बात करेंगे, अनुभाग विभक्ति निकालो, देखो जरा, नाना जीवन की
सर्वदा
अपेक्षा
हो जाएगा भी सर्वदा करने वाले।
हाँ,
नहीं थी।
190 कैसा होगा?
नहीं, काल की बात है ना।
हाँ, 233 पृष्ठ पर है। तो 33 से शुरू होते हैं। देखो वहां तो अविनुभाग विभक्ति की बात चल रही थी, यहाँ स्टार्स ऑन 233। शुरू से देखते हैं, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग वाले जीवों का काल कितना है? तो जघन्य काल अंतर्मुख उत्कृष्ट पल्ले के असंख्यात विभाग। मैं सूत्र सूत्र पढ़ रही हूँ। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर ऐसा ही है, क्योंकि उसमें तो उत्कृष्ट हमेशा पाया जाएगा, वो तो सर्वदा है। फिर उन्होंने आदेश में देखना शुरू किया 235 से। हम ऊपर से पढ़ेंगे, आदेश से नारकियों में मिला ना, पांचवी पुस्तक देख रही हूँ मैं। आदेश से नारकियों में 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग का कितना काल है? जघन्य काल एक समय। यहाँ तो अनुभाग की बात चल रही है, हम जो देख रहे हैं वो संक्रमण की बात कर रहे हैं। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग, फिर भी उतना ही ना। जगन्य हमने अंतर्मूर्त देखा था,
पल्ले का असंख्यात
अनुत्कृष्ट सर्वदा है। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग का काल सर्वदा है, अनुत्कृष्ट का जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। अब यहाँ अनुत्कृष्ट संक्रमण की बात चल रही है अपनी, यहाँ तो यहाँ सम्यक का अनुत्कृष्ट एक समय हो जाता है, क्योंकि कृतकृत्य वेदक का एक समय भी वहां घटित हो सकता है। परंतु हमें तो संक्रमण की बात चल रही है, यहाँ पर संक्रमण की अपेक्षा भी वो
एक समय
जघन्य, हाँ, जिसको हम अनुत्कृष्ट कह सकते हैं, वो एक समय घटित हो सकता है। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त उसका भी घटित होगा। और जहां जहां कृतकृत्य वेदक उत्पन्न होते हैं उन सब में ऐसा ही होगा। और दूसरी से सातवीं में सम्यक्त्व का अनुत्कृष्ट अनुभव होगा ही नहीं, वैसे पंचेंद्रिय तिरियन चौंदिनी में नहीं होगा, भवनवासी में नहीं होगा, ज्योतिषी में वगैरह वगैरह। अब मनुष्य की बात जो हम देख रहे थे, सामान्य मनुष्यों में सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का काल ओग के समान है। इतना विशेष है कि 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग बांध के
मनुष्य में,
हाँ, उसका कांडघात का एक समय बाकी था तभी मनुष्य में आया है, इसलिए एक समय घटित होता है। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, वो तो सब जगह अंतर्मूर्त जैसे होता है वैसे यहाँ पर भी अंतर्मूर्त होगा। क्योंकि मनुष्य संख्यात है ना, उत्कृष्ट बांधने वाले भी संख्यात है, अन्यत्र लंबा काल होता है उत्कृष्ट का। ओग में तो हमने पल्ले का असंख्यात प्रभाग देखा था, यह मनुष्य जो पर्याप्त मनुष्य है जो उत्कृष्ट का बंध करेंगे और फिर उत्कृष्ट का संक्रमण करेंगे वो तो संख्यात ही होंगे, इसलिए उनकी अपेक्षा तो अंतर्मूर्त होगा। इन्हें एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त और संख्या जीवों की अपेक्षा भी अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट का सर्वदा काल है, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट का काल सर्वदा है, वो तो हमेशा घटेगा। और अनुत्कृष्ट का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अब यहाँ विशेष है कि मनुष्य पर्याप्तकों में सम्यक्त्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय है। ये ख्याल में आया कैसा?
मनुष्य पर,
हाँ, पहले बताया था। देखो मनुष्य पर्याप्तों में क्या कहा, सम्यक्त्व का जघन्य कहो या अनुत्कृष्ट कहो, वो एक समय कैसे घटित होगा? आपने कुछ लिखा नहीं पुस्तक में? कुछ नहीं लिखा, हाँ। तो अभी पढ़कर बता रहे हो। देखो कोई मनुष्य नहीं है दर्शन होने की क्षपना करता है, और मरकर भोग भूमि में उत्पन्न होता है पर्याप्त मनुष्यों में, उसको मनुष्य पर्याप्त कहेंगे, पहले उसको मनुष्य नहीं कहते थे। अब उसका कुत्ते कुत्ते वेदक में जन्मा है तो एक समय के लिए वो वहां होगा, नहीं तो एज इट इज मनुष्यों में एक समय कैसा होगा, क्योंकि करने वाले ही मनुष्य है। ख्याल में आई बात ये? और मनुष्यनियों में सम्यक्त्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग का एक समय काल नहीं पाया जाता, मनुष्यनी में
नहीं पाया,
वो वहां नहीं, क्योंकि जो उत्पन्न होने वाले मनुष्यनी में कभी नहीं उत्पन्न होंगे, करने वाले तो होंगे, उत्पन्न होने वाले सम्यक्त्व के साथ आते हैं तो पुरुष वेद में ही जन्मेंगे। तभी हमने बहुत सोचा था ना, फिर ये उत्तर मिला था। यही बात अभी हमने यहाँ पर भी देखी ना,
वरना इंडिकन पेज लिसन लेना।
यहाँ क्या पढ़ रहे थे हम, 77 पर वेदों की बात पढ़ रहे थे। चलो और पढ़ लेते हैं। मनुष्य अपर्याप्तकों में 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय है अपर्याप्तों में, क्यों अन्यत्र उत्कृष्ट करके यहाँ आया है। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और दोनों का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण है, क्योंकि अन्यत्र भी पल्ले का असंख्यात्व भाग है तो यहाँ जन्मे है तो यहाँ पर भी घटित होगा। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में और मनुष्य अपर्याप्त ऐसे भी सांतर मार्गणा है पल्ले का असंख्यात्व भाग तक रहती है। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का काल सर्वदा है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का काल सामान्य देवों की तरफ है। हम अभी जघन्य की बात करते हैं, हम जघन्य को पढ़ रहे थे, पहले हमने उत्कृष्ट को पढ़ लिया, अब जघन्य की बात पढ़ेंगे। देखो 236 से मिथ्यात्व और आठ कषायों के जघन्य अनुभाग सत्कर्म वाले कभी हो गए तो सर्वदा हो गए, क्योंकि वो सूक्ष्म निगोल में पाए जाते हैं। बाकी हमने सम्यक्त्व चार संज्वलन वगैरह वगैरह का एक समय देखा था। यहाँ विभक्ति की अपेक्षा बात है और हमारे संक्रमण की अपेक्षा बात है, इसलिए उतना डिफरेंस तो पड़ेगा। यहाँ 237 पृष्ठ पर देखते हैं अनंतानुबंधी का जघन्य
एक समय और
आवली का, हाँ उत्कृष्ट काल आवली का असंख्यात्व काल। समय मिथ्यात्व और छह नौकशायों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, क्योंकि उसके अंतर्मूर्त तक उसकी क्षपणा पाई जाती है।
अनंतानुबंध में जघन्य काल एक समय है ना,
अनंतानुबंधी हाँ
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट आवली के
आवली का असंख्यात्व काल एक समय। यहाँ इसके पूरे ग्रुप के साथ लिया था उसको। अब जो हम आदेश में पढ़ रहे थे 239 पेज पर कि नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय 9 नौकषायों के जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय है, नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण है, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा अधिक से अधिक काल अंतर्मूर्त तक रहेगा। और ऐसे जीव कितने असंगी से आए हुए देखे हमने, तो अंतर्मूर्त होगा तो ये पल्ले का असंख्यात्व भाग काल नाना जीवों की अपेक्षा।
तो एक समय कैसे घटित हुआ, आदेश से नाते मिथ्यात्व 12 कषाय अनुभाग का जघन्य काल,
वो तो उसके पहले जघन्य से अजघन्य हुआ था क्योंकि यह संक्रमण
एक समय के लिए जघन्य।
देखो नीचे देखते हैं मनुष्यों में 389 पॉइंट नीचे से चौथी लाइन, मनुष्यों में मिथ्यात और आठ कषाय के जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण है। यानी ये जीव वहां से आया सूक्ष्म निगोद में से, एक समय के लिए जगन्य रहा, बाद में वो तो अजगन्य हो गया। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग क्यों? क्योंकि वो जन्मत तो एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त घटित होगा, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त प्रमाण घटित होगा, क्योंकि मनुष्यों में लिखा है, पर्याप्त मनुष्यों में नहीं लिखा है। सम्यक्त्व आठ कषाय और तीनों वेदों में जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय, ये कौन से आठ कषाय हो गए? और संजुल लिखा है ना। हाँ अच्छा है ना। सम्यक मिथ्यात्व और छ नौ कषायों के जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सब प्रकृतियों के अजघन्य अनुभाग का काल सर्वदा है। अब देखो, इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए, इतना विशेष है कि जिसका काल पल्ले के असंख्यातवे भाग बतलाया है उसका यहाँ अंतर्मूर्त जानना चाहिए।
संख्यात जीव के
देखो वहाँ कैसा है, पल्ले का असंख्यात भाग एक जीव के लिए अंतर्मूर्त, तो आवली के असंख्यातवे भाग के लिए पल्ले का असंख्यात भाग। अब यहाँ जघन्य काल लेना है, नहीं वो उत्कृष्ट ही ले है ना, यहाँ पर भी मनुष्य पर्याप्तों में, तो ये जीव कितने इसमें जन्मने वाले तो संख्यात हो गए, जब सामान्य मनुष्य कहते तो असंख्यात हो गए, जब पर्याप्त मनुष्य मनुष्य नहीं कहेंगे तो संख्यात हो गए। तो एक जीव के लिए अंतर्मूर्त, तो संख्यात जीवों के लिए भी अंतर्मूर्त। अब उसके आगे मनुष्य पर्याप्त को में, मनुष्य पर्याप्त कहते हैं तो हम पुरुष वेदी की बात करेंगे। स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। और मनुष्यनियों में पुरुष वेद और नपुसक वेद का भंग छह नौकोशाएं की तरह इन्हें अंतर्मूर्त है, यानी जो दूसरा वेद होगा अन्य वेद की बात है। स्त्री वेदियों के लिए पुरुष वेद नपुसक वेद, और पुरुष वेद के लिए स्त्री वेद नपुसक वेद, उसका अंतर्मूर्त होगा। यही पढ़ना था अपने यहाँ पर, 77 पृष्ठ पर आना अपने नौवीं पुस्तक। मनुष्यों, ये फिर पढ़ती हूँ मैं विशेषार्थ, मनुष्यों में जिस प्रकार स्त्रीवेद और नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय बन जाता है, उस प्रकार यह काल यहाँ नहीं बनता क्या कहते हैं, जघन्य अनुभाग सत्कर्म मैंने विभक्ति की बात, वहां तो घटित होता है एक समय घटित होता है, परंतु यहाँ जघन्य संक्रमण की बात चल रही, क्योंकि यहाँ पर अंतिम अनुभाग कांडक के पतन का काल विवक्षित है, इसलिए वह जघन्य भी अंतर्मूर्त कहा है और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त कहा है। पूरा कांडक का जो जितना प्रमाण है उत्कीर्ण काल, उसको यहाँ अंतर्मूर्त तक जघन्य कहेंगे। यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिए, मनुष्यनियों में नपुसक वेद का जघन्य अनुभाग संक्रम नहीं होता। इसलिए मनुष्यनियों में पुरुष वेद का भंग छह नौ कषायों के समान है ऐसा कहते समय पुरुष वेद के साथ नपुसक वेद का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्री वेदी जो है नपुसक वेद की क्षपणा पहले पूरी करता
उसका जगनी
और वहां उसका अनुभव बहुत ज्यादा है, और बाद में वो स्त्री वेदी और अंतर्मूर्त तक रहता है। सन्निकर्ष में भी देखा था ना,
हाँ, कल भी देखा था।
अब आगे के पृष्ठ पर आते हैं 78 में, नाना जीवे ही अंतरम। अब नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का कथन करते हैं। अधिकार का परामर्श करने वाला यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्तस्य उक्कस्य अनुभाग संकामयानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों का अंतर काल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर देख रहे अभी, अभी तो पहले तो हमने काल देखा था, अब अंतर देख रहे हैं। काल कितना देखा था अभी अभी? मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक का नाना जीवों की अपेक्षा काल उत्कृष्ट काल पल्य का संख्या तो अभी देखा था, अब यहाँ अंतर पूछ रहे हैं। यह पृच्छा सूत्र सुगम है। जघन्येन एये समो, जघन्य अंतर एक समय है, या फुल स्टॉप देना दंड। यथा मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक नाना जीवों का प्रवाह के विच्छेदवश, प्रवाह ने एक के बाद एक कोई ना कोई करता रहे उसको कहेंगे प्रवाह। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीव ने वो उत्कृष्ट का संक्रामक वो नहीं था, उसने बंद ही नहीं किया तो संक्रामक भी नहीं होगा। एक समय के लिए अंतर होकर दूसरे समय में उनकी पुनः उत्पत्ति देखी जाती है, यानी फिर किसी न किसी जीव का बंद होकर फिर संक्रमण शुरू हुआ है। इस प्रकार जघन्य अंतर एक समय प्राप्त होता है। उपकस से न असंख्य जाल होगा, उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। क्योंकि
पहले हमने कम देखा था अंगुल के असंख्यात लोक,
उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर असंख्यात लोक ही देखा था ना। विभक्ति में आप कह रहे
हैं? हाँ, विभक्ति में, क्योंकि हमने अंगुल के असंख्यात लोक प्रमाण देखा था।
और जघन्य का एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा जघन्य का अंतर देखा था असंख्यात लोग। ऐसा लगता है। एक मिनट, 241 में तो ये असंख्यात लोग ही लिखा है, तो आपको एक जीव की अपेक्षा याद होगा कुछ?
कुछ ऐसे कुछ।
एक जीव की अपेक्षा बात अलग है ना। देखा देखा, अनेक जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा बात आपको पढ़ना है ना। एक जीव अपेक्षा अंतर निकालो। वो जघन्य अनुभाग के लिए उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक था, और उत्कृष्ट का अंतर जो देखना है हमें, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर चाहिए ना, वो तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है एक जीव की अपेक्षा।
हाँ, एक जीव की अपेक्षा तो अनंत काल हो जाएगा।
हाँ, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य का अंतर जो है वो हमने असंख्यात लोग देखा
लोक
था। अब फिर आते यहाँ पर उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का बंद हुए बिना सब जीवों का इतने काल तक अवस्थान देखा जाता है। फुल स्टॉप यहाँ भी रह गया, यानी किसी भी जीव को उत्कृष्ट अनुभाग का बंद नहीं हुआ इतने काल तक, असंख्यात लोक प्रमाण काल तक। अनुकस्य अनुभाग संकामयानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी। उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है। नत्य अंतरम, अंतरकाल नहीं है, क्योंकि नाना जीवों की मुख्यता से अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम का कभी भी विच्छेद नहीं उपलब्ध होता। एक जीव की अपेक्षा तो होगा जब वो उत्कृष्ट कर रहा है, परंतु नाना जीवों की अपेक्षा उसका विच्छेद नहीं पाया जाएगा। कोई ना कोई जीव तो अनुत्कृष्ट वाले तो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि वे सर्वदा पाए जाते हैं। एवं शेषाणम कम्मानम, इसी प्रकार शेष कर्मों का अंतरकाल जानना चाहिए। यह अर्पणा सूत्र सुगम है। अब यहाँ संबंधी विशेषता का कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। नवरी सम्मत सम्मा मिच्छत्तानम उक्कस अनुभाग संकाम यंत्रम केवचिरम कालादोहोदी। इतनी विशेषता है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों का अंतर कितना है, यह सूत्र सुगम है। हमने देखा था ना इसको, नत्य अंतरम, अंतर काल नहीं है क्योंकि सर्वदा काल हमने देखा था पहले, यह सूत्र भी सुगम है। अनुकस्य अनुभाग संकामयानम अंतरम केवचिरम कालादोहोदी। अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों का अंतरकाल कितना है, अनुत्कृष्ट कब होगा, सपना में, यह सूत्र सुगम है। जहन्य न ये समो, जघन्य अंतरकाल एक समय है क्योंकि दर्शन मोनीय के क्षपकों का जघन्य अंतर तत्प्रमाण उपलब्ध होता है। यानी किसी ने एक क्षपणा की तो उसका अनुत्कृष्ट प्रारंभ हुआ, वो क्षपणा करके
पूरा हो गया,
नष्ट हो गया, फिर एक समय के अंतर से किसी अन्य जीव ने शुरू की तो एक समय का अंतर होगा। उक्कस्य न छ मासा, उत्कृष्ट अंतर छह महीना है क्योंकि दर्शन होने की क्षपणा का नाना जीव विषय उत्कृष्ट विरह काल तत्प्रमाण है। अंतर को ही विरह काल कहते हैं। इस प्रमाण ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। ये तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का अंतर हो गया। एक तो जघन्यम अंतरम, आगे जघन्य अंतर का कथन करते हैं। जघन्य अंतर यानी जघन्य का अंतर, जघन्य अनुभाग संक्रम का अंतर, उसमें जघन्य और उत्कृष्ट फिर बताएंगे। यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्तस्य अट्ठकसायस्य जहन्न अनुभाग संकामयानम केवचिरम अंतरम, वो तो हमेशा पाया जाता है ना सूक्ष्म निगोद में। मिथ्यात् और आठ कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का अंतर काल कितना है, यह सूत्र सुगम है। नत्य अंतरम, अंतर काल नहीं है क्योंकि प्रकृत जघन्य अनुभाग के संक्रामक सूक्ष्म जीव अंतर के बिना सदाकाल अवस्थित रहते हैं। स्थिति बराबर है क्या, अवस्थित रहते
हैं, लिखता है।
आगे सम्मत सम्मामिच्छत्त चदुसंजलन नवनोकसायानम जहन्न अनुभाग संकामयंत्रम केवचिरम कालादोहोदी। सम्यक्व सम्यक मिथ्यात्व चार संज्वलन और नौ नौकषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। जहन्य एय समो, जघन्य अंतर एक समय है, दोनों को इकट्ठा लिया उन्होंने। उक्कस्य न छह मासा और उत्कृष्ट अंतर छह महीना है, ये दोनों ही सूत्र सुगम है। अब यहाँ संबंधी विशेषता का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पहले में पहले सबको एक साथ बिठाया, क्या सम्यक सम्यक मिथ्यात्व, नाना जीवन की अपेक्षा बात करें यहाँ पर, अंतर की बात चल रही है यहाँ पर, काल की नहीं अंतर की। तो अंतर के बाद उन्होंने एक क्षपणा की, चार संज्वलन नौ नौकषा, जहन्य एक समय का अंतर और उत्कृष्ट छह मास। अब विशेषता बता रहे हैं, नवरी तिन्नि संज्वलन पुरी से वेदानम उक्कस्येन वासम सादिरेयम। इतनी विशेषता है कि तीन संज्वलन और पुरुष वेद का उत्कृष्ट अंतर साधिक एक वर्ष है। लोक के लिए नहीं बताया। हाँ लक्ष्मी बेन ऐसा क्यों किया, क्षपणा तो लोक की भी हो रही है। हाँ पहले क्रोध मान माया लोग होता है ना, तो बाद में लोक का होगा ही ना, यहाँ पर भी है ना। साधिक एक वर्ष क्यों लिखा, और वहां तो छह महीने बता देंगे बराबर है। तो क्षपक श्रेणी का अंतर तो छह ही महीना है ना, तो यहाँ शादी के एक वर्ष क्यों कहा दोषी साहब आपके? हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ, लोग को छोड़ा है क्योंकि लोग का अंतर बने, जिसको छोड़ा है उसका अंतर छह महीना घटित होता है सम्यक के लिए, सम्यक मिथ्यात्व के लिए, और संज्वलन लोग के लिए छह महीने तो घटित हो गए दृष्टांतर। पर इनको क्यों अलग निकाला, तीन संज्वलन पुरुष वेद को अलग निकाल के साधिक एक वर्ष क्यों कहा, यह मेरा प्रश्न है। दोषी साहब चलो उत्तर दे।
क्रोध के उदय के साथ मैक्सिमम अंतर एक साल का हो सकता है क्रोध के उदय।
देखो कोई क्रोध के उदय सही चढ़ेगा या मान के या माया के, उसमें तो डिफरेंस होगा ना। किसी भी कषाय से चढ़ो तो छह महीने का अंतर कहेंगे, परंतु यहाँ कंडीशन डाली है क्योंकि उसका जगन्य किसके होगा, क्रोध के उदय से चढ़ने वाले को ही क्रोध का जगन्य होगा, क्योंकि मान से चढ़ने वाले के वो अश्वकर्ण वगैरह उसके तो पहले हो जाते हैं और क्रोध की क्षपना बहुत पहली होती है
तो उसका
अनुभव ज्यादा होता है वहां पर, तो उसके साथ अगर चढ़ना ये कंडीशन डाली है तो उसमें साधिक एक वर्ष का अंतर पड़ता है।
और पुरुष वेद के साथ चढ़ेगा तो उसका
पुरुष वेद में भी ऐसा ही
है, तो उसका भी एक साल अंतर,
उसका एक साल अंतर पड़ता है। अब कोई कंडीशन मत डालो तो क्षपक श्रेणी का जनरल अंतर कितना है तो
छह महीने,
और यहाँ कंडीशन डाली है तो साधिक एक वर्ष होता है। संज्वलन का जगन्य कब होता है, क्रोध का जगन्य कब है, क्रोध सहित चढ़ने वाले को क्रोध का जगन्य, मान माया या लोभ सहित चढ़ने वाले के क्रोध का जगन्य नहीं होता उस पर, इसलिए क्रोध सहित चढ़ने वाले में कितना अंतर होगा, एक मैक्सिमम अंतर एक वर्ष,
वैसे ही मान,
वैसे ही मान के लिए, वैसे ही माया के लिए साधिक एक वर्ष, उसी को जगन्य होगा, यानी क्रोध या मान सहित चढ़ने वाले को मान का जगन्य
माया
होगा। देखो यथा हम यहीं से पढ़ेंगे अभी, यथा क्रोध संज्वलन, संज्वलन चाहिए, संज्वलन का ये प्राकृत संज्वलन आ गया वहाँ, क्रोध संज्वलन का उत्कृष्ट अंतर विवक्षित होने पर स्वोदय से, स्वोदय शब्द डाला ना, अंतर का प्रारंभ करके तथा छह माह का अंतर कराकर पुनः मान माया और लोभ के उदय से चढ़ाकर पश्चात स्वोदय का सुबो हो गया, स्वोदय का आश्रय करने से साधिक एक वर्ष प्रमाण अंतर उत्पन्न करना चाहिए। पहले क्रोध से ही चढ़ा और फिर मान छह माह का अंतर करके मान माया लोभ से चढ़ा और फिर और छह महीने का अंतर करके क्रोध से चढ़ा, इसलिए वर्ष हो गया साधिक वर्ष। क्रोध से चाहिए चढ़ने वाले के क्रोध का जगन हो सकता है, मान से चढ़ा है उसको क्योंकि हमको उत्कृष्ट अंतर घटित करना था, इसलिए नहीं चढ़ता वो बात नहीं है। मान से माया से लोभ से जो कोई चढ़े 608 जीव वो ये तीन से ही चढ़े, क्रोध से चढ़े ही नहीं।
शादी दो साल हो जाएगा
नहीं होता है ये तो एक साल शादी के उत्कृष्ट ही
होता।
देखो आज आगे प्रश्न पूछ रहे आपका, इसी प्रकार मान और माया संज्वलनों का भी प्रकृत उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मान संज्वलन का माया और लोभ के उदय से तथा माया संज्वलन का लोभ के उदय से चढ़ाकर अंतर ले आना चाहिए, यानी उसका अंतर वो उत्कृष्ट बढ़ाना चाहिए। शंका, क्रोध संज्वलन का पूरा दो वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट अंतर क्यों नहीं उत्पन्न होता, हर एक को वो छह छह महीने के अंतर से तीनों को चढ़ाओ। समाधान, नहीं, क्योंकि सर्वत्र अनुसंधान रूप से पूरे छह मास असंभव है, अने हर एक जगह ने बस क्रोध से चढ़ा फिर छह मास से मान हुआ फिर छह मास से, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार स्वोदय से अंतर का प्रारंभ करके परोदय से अंतर को प्राप्त हुए पुरुष वेद का भी साधिक एक वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट अंतर संभव जानना चाहिए। पुरुष वेद में भी ऐसा ही, पहले पुरुष वेद से चढ़ा, बाद में अन्य वेद से चढ़ा, फिर जाके पुरुष वेद से चढ़ा तो साधिक वर्ष हो जाता है। नौ से वेदस्य जहन अनुभाग संकामयंत्रम उक्कस्येन संकेत जानी वासानी। नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का उत्कृष्ट अंतर संख्यात वर्ष प्रमाण है, जिसको हम वर्ष पृथक को कहते थे, क्योंकि नपुसक वेद के उदय से अंतर का प्रारंभ करके अविवक्षित वेद के उदय से वर्ष पृथक को प्रमाण अंतर को प्राप्त हुए उसका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अंतर उपलब्ध होता है। अनंत अभी अनंतानुबंधी अनंतानुबंधिनम जहन अनुभाग संकामयंत्रम केवचिरम कालादो होदी। अनंतानुबंधियों के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों को संक्रामकों का अंतरकाल कितना है यह सूत्र सुगम है। जहन्य ने यह समो जघन्य अंतर एक समय है, एक समय के लिए अंतर को प्राप्त हुए प्रकृत जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का फिर भी उसके अनंतर समय में प्रादुर्भाव होने में कोई विरोध नहीं आता। इन्हें किसी एक जीव ने किया, एक समय रुककर फिर अन्य किसी ने किया। उपकस्य न असंख्य जालों का,
ये बहुत बड़ा अंतर बताया
उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि वो विशिष्ट परिणाम से वो जघन्य होना चाहिए। वहाँ जघन्य भी
अच्छा,
हो सकता है
तो करेगा, पर
संयोजना करेगा ये कोई नहीं करेगा वो बात नहीं है। हाँ यहाँ सभी नाना जी उनकी बात चल रही, एक जीव तो क्षपणा चढ़ेगा तो फिर दोबारा चलने का सवाल ही नहीं है। अनेक छह महीने आठ समय में 608 जीव तो चढ़ेंगे ही, तो उसमें से क्रोध के सहित कोई चढ़े, सभी 608 तो क्रोध से नहीं चढ़े तो उसका अंतर हो गया। मान लेते 608 संख्या पूरी हुई, उसने अंतर कर दिया। अब छह महीने के अंतर से अभी जब फिर और 608 जीव जाएंगे तो मान माया या लोभ उसके सहित चढ़े, फिर छह महीने का अंतर हुआ, फिर इसके साथ क्रोध के साथ चढ़े। इसीलिए प्रश्न पूछा था, एक एक के साथ चढ़ाते रहो और दो वर्ष का अंतर कर दो तो ऐसा नहीं होता। मान के जघन्य के लिए दोनों को होगा, क्रोध और मान, क्योंकि वो पहले क्रोध का है फिर वही टर्न होकर मान का उदय बन जाता है, इसलिए वहां तो घटित होता है। देखो जघन्य परिणाम से प्रारंभ करके,
तो यहाँ तो माया का भी एक वर्ष अंतर बताया, तो क्रोध मान और माया तीनों के साथ नहीं चढ़ेगा। दूसरे छह महीना कंप्लीट हो गया, दूसरे छह महीने में खाली लोभ के उदय
के साथ चढ़े,
वो 608 जीव लोभ के उदय के साथ ही चढ़े।
हाँ।
और पीछे क्रोध मान माया के साथ शुरू हो गए,
बराबर सबके लिए ये कंडीशन डाली होना। अब ये असंख्यात लोग जो कह रहे हैं जघन्य परिणाम से प्रारंभ करके, परिणामों की बात है यहाँ, क्योंकि ये जघन्य किसके होता है, जो जघन्य परिणाम है उसके होता है। विसर्जना के बाद संयोजना करने वाले के पहले समय में भी
असंख्यात
लोक प्रमाण परिणामों के वेरिएशन होंगे, उसमें से जघन्य में जघन्य परिणाम चाहिए। आपका प्रश्न था ना उसमें, क्या सबके परिणाम जघन्य हो गए? नहीं, पहले समय में परिणामों के वेरिएशंस असंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए कहते जघन्य परिणाम से प्रारंभ करके असंख्यात लोक मात्र अजघन्य अनुभाग संक्रम के योग्य परिणामों से ही संयोजना करने वाले नाना जीवों के यह उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। यानी वो जघन्य परिणाम किसी के हुआ ही नहीं है, वहाँ पॉसिबल परिणाम कितने तो असंख्यात लोग प्रमाण है, तो अन्य अन्य जीवों ने वो अन्य अन्य ही परिणाम किए, तो इतना लंबा काल तब तक तो किसी को हुआ ही नहीं। वो तो नाना जीवों के यह उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब उक्त सब प्रकृतियों के अजगण्य अनुभाग के संक्रामकों का अंतर का विधान करने के लिए क्या हुआ? अजुन मैं अभी मैं ऊपर का पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, अभी सूत्र तक नहीं आई। अब उक्त सब प्रकृतियों के अजगण्य अनुभाग के संक्रामकों के अंतर का विधान करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। अब ऊपर पढ़ना, एदेसिम सव्वेसिम अजन्न अनुभागस्य केवचिरम अंतरम। इन सब प्रकृतियों के अजगण्य अनुभाग के संक्रामकों का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। नत्य अंतरम, क्योंकि जगण्य के लिए तो कंडीशन है, अजगण्य तो हमेशा ही रहेंगे, कहते अंतरकाल नहीं है, क्योंकि उक्त सब प्रकृतियों के अजगण्य अनुभाग के संक्रामकों का अंतरकाल के बिना सदाकाल अवस्थान देखा जाता है। सम्यक सम्यक प्रकृति को तो हमने अलग निकाला ही था, अन्य प्रकृतियों की बात है यहाँ पर, जो सदाकाल होगा। इस प्रकार ओह प्ररूपण समाप्त हो। अब आदेश से, सब नारकी, सब तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। मनुष्य त्रिक में ओग के समान भंग है, इतनी विशेषता है। इनमें मिथ्यात और आठ कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का जघन्य अंतर एक समय, नाना जीव है ना, एक जीव की अपेक्षा तो अंतर नहीं होगा, जघन्य के साथ आया है एक इंद्रिय में से, तो अंतर छोड़कर अन्य कोई जीव आएगा तो उसको जघन्य होगा। और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि उसी जघन्य अनुभाग के साथ आना चाहिए। मनुष्य नियों में क्षपक प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्व प्रमाण है। क्षपक प्रकृतियों ने जिसकी क्षपणा होती है, क्योंकि स्त्री वेद सहित श्रेणी चढ़ने वालों का अंतर होता है उत्कृष्ट अंतर, तो वर्ष पृथक्व होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ, मनुष्य त्रिक में अन्य सब अंतरकाल ओह के समान बन जाता है, मात्र मिथ्यात और आठ कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों के अंतरकाल में कुछ विशेषता है। बात यह कि ओह से इन प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का अंतरकाल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रियों में इन प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग संक्रम करने वाले जीव सर्वदा बने रहते हैं। परंतु मनुष्य त्रिक की स्थिति नारकी आदि के समान है, क्या कि अन्य बहुत से वो जघन्य के साथ आया हुआ है, इसलिए इस विशेषता का निर्देश करने के लिए यहाँ पर उसका अलग से उल्लेख किया है। तथा मनुष्यनि अधिक से अधिक वर्ष पृथक्व प्रमाण काल तक क्षपक श्रेणी पर आरोहण न करे, यह संभव है, यह अधिक से अधिक अंतर बताया। इसलिए इनमें क्षपक प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के संक्रामकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्व प्रमाण कहा। क्षपक ना अन्य क्षपक प्रकृतियां चारित्र मुनि के ऊपर जो लिखा है, हाँ, तो वहां तो एकेंद्रियों में जो आने वाले हैं ना, मनुष्य त्रिक की बात है। एकेंद्रियों में आने वाले मनुष्य पर्याप्त में बहुत सारे जीव उत्पन्न हो, हाँ, सूक्ष्म में हमेशा अनंत जीव सूक्ष्म में है, हाँ, मनुष्य त्रिक में आने वाले बहुत कम हो गए।
वहाँ पे जगने के लिए वो असंख्यात लोक प्रमाण जो वेरिएशन है उसकी अपेक्षा ये काल बताता है ना, जगन्य परिणाम के लिए असंख्यात लोक प्रमाण काल तक
एक जीव की अपेक्षा
हाँ एक जीव की अपेक्षा
नाना जीव की अपेक्षा सर्वदा है
वो तो एकेंद्रिय की अपेक्षा
एकेंद्रिय में हाँ
अभी मनुष्य में जो आएगा तो एकदम जगन्य में जगन्य करके आने वाले जीव
जगन्य में जगन्य करके आने वाले
परिणामों की विविधता की अपेक्षा ही असंख्यात
यहाँ बताए ना मनुष्यों में जन्मने वाले जो जीव है उनके तो असंख्यात लोक का अंतर बताया अभी क्योंकि सूक्ष्म मरकर तो कितने अन्य अन्य परिवार में चले जाए कितने सूक्ष्म में चले जाए कितने बादर में चले जाए केंद्रीय में चले जाए यानी उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है वहाँ पर मनुष्य और वो मनुष्य त्रिक में बात बताए तो ये संख्यात ही जीव है अतः समुत्पत्ति करके मनुष्य में पर्याप्त मनुष्यों की बात चल रही है मनुष्य त्रिक में किसको लिया है पर्याप्त मनुष्य मनुष्य नहीं लिया वहाँ पर शेष कथन स्पष्ट ही है ये अंतर का समाप्त हुआ भाव सर्वत्र उदयिक भाव है सबको ये भाव वाली बात बहुत पसंद है अप्पा बहुअम अब अल्प बहुत्व को कहते हैं अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र सुगम है जघन्य और उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम रूप विषय के भेद से वह अल्पभूतव दो प्रकार का है वो विषय में यह आधा हुआ है उसमें उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम विषयक अल्पभूतव उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति विषयक अल्पभूतव से भिन्न प्रकार का नहीं है इसलिए उसके साथ इसकी मुख्यता करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं जहां उपकस्य अनुभाग विहत्ति तहां उपकस्य अनुभाग संकमो जिस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति विषय कल्पभूतव है उसी प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम विषय कल्पभूतव जानना जिस प्रकार अल्पभूतव विशिष्ट उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का कथन किया है उसी प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम अल्पभूतव का भी कथन करना चाहिए क्योंकि दोनों में कोई अलग अलग विशेषता नहीं है यह उक्त कथन का तात्पर्य है थोड़ा देख लेते अल्पभूतव भी अल्पभूतव
256 ना नहीं ये तो
अल्पभूत 256 से शुरू हो जाता है
अनुभाग का
वहाँ ऐसा लिखा है उत्कृष्ट अनुभाग का बंद का जो है देखो ये हमने बहुत बार लिखा था जो प्रदेश प्रदेश का बंटवारा भी ऐसे होता है अनुभाग का बंद ही स्थित क्रम इसमें क्या है प्रत्येक प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा से नंबरिंग करेंगे अल्प से उत्कृष्ट की ओर या बंद में यहाँ सबसे उत्कृष्ट जिसका अनुभाग है उसको यहाँ पहले कहा है अल्प बहुत्व में उल्टे क्रम से लेंगे हम अल्प से बहुत्व की ओर अब पहले बहुत्व की अपेक्षा बता रहे अनुभाग बंध जिसका उत्कृष्ट होता है उसकी बात है यानी सभी प्रकृतियों का अपना अपना उत्कृष्ट अनुभाग है तो कौन सा अनुभाग सबसे ज्यादा है और कौन सा कम है उसकी पहले यहाँ नंबरिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा से ज्यादा अनुभाग किसका है तो मिथ्यात्व का मिथ्यात्व का
पीछे अनंत अनुभव
दूसरे नंबर पर अनंत अनुबंधी लोभ पहले लेना
लोमा को मान
लोभ मान
माया
मान
क्रोध
क्रोध और मान लोमा क्रोमा लोभ माया क्रोध और मान अनंतानुबंधी के बाद संज्वलन का नंबर उसका भी क्रोमा लोमा क्रोमा उसके बाद प्रत्याख्यान उसके बाद अप्रत्याख्यान यानी ये तो हो गए ना 13 ये 4 × 16 और 1 × 17 हो गए सब
पीछे नपुंसक वेद का
तो फिर उसके बाद है नंबर नपुसक वेद उसके बाद अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद फिर रति और लास्ट में हास्य
तो यहाँ पे हास्य पे
अनुभाग का हाँ, तो अल्प की ओर से लेना है तो हास्य को पहले ले लेंगे
पीछे रत्ती
और 27 नंबर पर सब सम्यक मिथ्यात्व को लिया था और सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अनुभाग उससे भी अनंत गुणाहीन बताया क्योंकि वो तो है ही देशघाती प्रकृति उसका उत्कृष्ट कितना होगा दारू के अनंत विभाग प्रमाण होगा जो अन्य के लिए जगन्य है अब यहाँ पढ़ देंगे फिर जगन्य की बात फिर वहां से देखेंगे हम सूत्र पहले पढ़ेंगे एतो जहन्नयम 83 पुष्प फिर निकालना है वही पेज रखो जरा आगे जघन्य अल्प बहुत्व को कहते हैं एतो अर्थात उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम विषय अल्प बहुत्व का व्याख्यान करने के बाद जघन्य अल्प बहुत्व को बतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वाक्य है उसका निर्देश दो प्रकार का है ओह और आदेश उनमें से सर्वप्रथम ओह का निर्देश करते हैं सवत्थो लोह संज्वलन से जघन्य अनुभाग संक्रमो लोह संज्वलन का जघन्य अनुभाग संक्रम सबसे स्तोक है उत्कृष्ट में बंद की अपेक्षा थी अब यहाँ बंद की अपेक्षा यहाँ नहीं लेना है यह जो लास्ट में लास्ट क्षपणा होती है उसका जघन्य में जघन्य होगा क्योंकि वह सूक्ष्म कृष्टि रूप है माया संजलन से जघन्य अनुभाग संकमो अनंत गुणों मिला 83 पेज पर लास्ट लाइन फिर पढ़ू क्या पहला लोभ संज्वलन का सबसे जघन्य था क्योंकि वो सूक्ष्म कृष्टि रूप है माया संज्वलन का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है
वो बादर
क्योंकि बादर कृष्टि रूप होने से इसने पहले ही अनुवृत्ति रूप परिणामों के द्वारा जघन्यपना प्राप्त कर लिया है पहले इन्हें उसके पूर्व अवस्था में जघन्यपना प्राप्त किया इसका जघन्य है वो नीचे उतर कर है लोभ संज्वलन बाद में क्षपणा होती उसके एक अंतर्मूर्त पहले माया की माया। बात है मान संज्वलन से जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुणा उससे मान संज्वलन का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है क्या नंबर दे रहा है अच्छा तीन नंबर
आ गया
पहले लोभ संज्वलन दूसरा माया संज्वलन तीसरा मान संज्वलन क्योंकि जघन्य स्वामित्व को विषय करने वाले माया संज्वलन संबंधी अंतिम नवक बंध से तथा यथाक्रम अनंत गुण रूप से स्थित हुई माया की तीसरी दूसरी और पहली संग्रह कृष्टियों से भी मान संज्वलन के नवक बंध रूप यह जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा देखा जाता है क्या कहना चाहते हैं माया संज्वलन का जो जघन्य है तीन तीन संग्रह कृष्टियां होती है ऊपर वाली अधिक अनुभाग वाली पहली फिर दूसरी फिर तीसरी यह तीसरी कृष्टि रूप माया का जघन्य है उससे माया की दूसरी कृष्टि रूप जो है वो अनंत गुणा है उससे पहली कृष्टि वाले वो अनंत गुणा है उससे भी
नवक समय
मान का जो जघन्य है वो अनंत गुणा है कोह संज्वलन से जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा उससे क्रोध संज्वलन का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है क्योंकि मान संज्वलन का जघन्य अनुभाग संक्रम जहाँ प्राप्त होता है उस स्थान से पीछे अंतर्मूर्त जाकर यानी पहले हमारी भाषा में नीचे और चला जाना क्रोध वेदक के अंतिम समय में हुए नवक बंध का अंतिम समय में संक्रमण करने वाले जीव के क्रोध संज्वलन के अनुभाग संक्रम का जघन्यपना प्राप्त होता है ये बात ख्याल में आ रही है ना ये पूर्व पूर्व अवस्था की बात है, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त पहले, वहां पर तो अनुवाह ज्यादा बंधेगा, संक्रमण भी ज्यादा होगा। सम्मतस्य जहन अनुभाग संकमो अनंत गुणों, ये क्रोध के पहले बीच में सम्यक को लिया, फिर बाद में पुरुषोत्त को ले रहे हैं, उससे सम्यक का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि पुरुष्टि रूप क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम से स्पर्धक रूप सम्यक का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा अधिक होता है, इसमें कोई विसंवाद नहीं उपलब्ध होता। ये कृष्टि रूप और स्वर्धक रूप क्या होता है? हाँ देखो, यहाँ तो स्पर्धक रूप होते हैं ना, स्पर्धक रूप से इसके नष्ट हो जाते हैं, स्पर्धक तो वर्गणाओं से बने हैं, और जब कृष्टि होती है नवे गुण
अनंत गुणा, अनंत गुणा ही होता है,
तो उसके वर्गणा से भी पहले में पहले स्पर्धकों से वो तो अपूर्व स्पर्धक, और फिर उसमें तीन तीन संग्रह कृष्टिया वगैरह होती है, जो अनंत गुणा अनंत गुणा हीन 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 होते चला जाता है, इसलिए यहाँ उसका अधिक है। पुरुष वेदस्य जहन अनुभाग संक्रमो अनंत गुण, उससे पुरुष वेद का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि सम्यक्त्व के प्रति समय होने वाले अपवर्तना संबंधी काल से पुरुष वेद के नवक बंध का प्रति समय होने वाला अपवर्तना संबंधी काल स्तोग देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं? पुरुष वेद का जो काल बताया है, नवक बंध का प्रति समय होने वाला अपवर्तन संबंधी काल, नवक बंध हुआ उसके बाद आवली काल तक कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद एक एक खाली रूप से उसका चल रहा है, वहां जो बंदी हुई उसकी बात चल रही है, और अंतिम समय में उसका जघन्य हो जाएगा। ये काल छोटा है और सम्यक्त्व का कितना है? लंबा है, क्योंकि कृतकृत्य वेदक काल में जब कांडक घात पूर्ण हुए उसके बाद अंतर्मूर्त प्रमाण वहां काल है, अंतर्मूर्त में प्रति समय वो अनुसमयापवर्तन चल रहा है, प्रति समय अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन होता है, तो अनंत गुणाहीन प्रति समय अनंत गुणाहीन होने का काल कृतकृत्य वेदक वाले के लंबा है, और पुरुष वेद में वो नवक समय प्रबद्ध के लिए आवली मात्र है, आवली में भी एक समय कम हो जाएगा उसका, इतना ही है। सम्मामिच्छत्तस्य जहन्न अनुभाग संकमो अनंत गुण, नंबरिंग किए क्या आपने? पांच छह और सात हुआ, क्योंकि देशघाती एक स्थानिक रूप पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग संक्रम से सर्वघाती द्विस्थानिक रूप इसका अनंत गुणत्व न्याय प्राप्त है, क्योंकि हमने देखा है वो क्षपणा के काल में देशघाती और एक स्थानिक हो जाते हैं, ये अप्रशस्त प्रकृतियां हैं सारी, और ये सम्यक मिथ्यात्व कैसा है? द्विस्थानिक है, क्योंकि उसमें वो दारू वाले स्पर्धक पाए जाते हैं, कितना भी जघन्य हुआ तो भी सर्वघाती से देशघाती तो नहीं होगा, इसलिए उसका जघन्य है उसके लिए, परंतु वो पुरुष वेद की अपेक्षा से अनंत गुणा होगा। अनंतानुबंधी मानस जहन अनुभाग संक्रमो अनंत गुण, उससे अनंतानुबंधी मान का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग विन्यास मिथ्यात्व के जघन्य स्पर्धक से अनंत गुणाहीन होकर अवस्थित है। सम्यक मिथ्यात्व कैसे तैयार हुआ? मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणाहीन होकर ये प्रकृति तैयार हुई, तथा दर्शन मोह की क्षपणा में संख्यात हजार प्रमाण अनुभाग कांडकों के घात से जघन्यपने को प्राप्त हुआ है। पहले मिथ्यात्व के अनुभाग से वो बना है जघन्य होकर, और जब दर्शन मोह की क्षपणा हुई तो कितने अनुभाग कांडक हुए? तो संख्यात हजार हुए, तो अंतिम अनुभाग कांडक में इसका जघन्य होगा सम्यक मिथ्यात्व का। परंतु अनंतानुबंधी मान का जघन्य अनुभाग विन्यास यद्यपि नवक बंध रूप है, ये मान को क्यों लिया?
वहां पे वो अश्वकरण नहीं हुआ है ना, इसकी अपेक्षा फिर लोमा कोमा नहीं होगा?
देखो बंध के समय लोमा कोमा ही होता है ना,
नहीं पर वहां पे अश्वकरण
पहले, अश्वकरण के पहले, हाँ।
हाँ। तो ये अश्वकरण का पहले का बात,
पहले की बात है। अश्वकरण का होता है
आठवें गुण के अंत में के नौवे,
तो अनंतानुबंधी में होता है कि क्रोध में?
अनंतानुबंधी के तो ये संयोजता में होगा ना, ये जगन
वही तो इसीलिए कहा। हाँ। ये तो जैसे बंध होता है तभी इसमें अनुभाग पड़ा है, यहाँ कोई अश्वकरण की बात नहीं है, जो क्षपणा में होती है अन्य कषाय में, जैसे अनुभाग बंध था वैसे सत्ता में पड़ा है अश्वकरण ने। अभी हमने क्या देखा था, अनुभाग पहला जिसका लंबा अधिक किसका है, लोभ का, फिर माया का, फिर क्रोध का, फिर मान का, और वहां कैसा हो जाता है, क्रोध मान माया लोभ। अश्वकरण ने घोड़े के कान कैसे बेस में ज्यादा प्रौढ़ है और फिर ऐसे टेपरिंग होते हैं, तो इसे क्रोध मान माया लोभ ऐसे एक समान हो जाते हैं। पहले ये उल्टा पुल्टा था ना, फिर लोभ माया फिर क्रोध मान, ऐसा भी नहीं कि पूरा उल्टा क्रम लिया था। तो लोभ माया क्रोध मान, लोभ में तीव्र अनुभाग और मान में सबसे कम, और यहां हम अल्प बहुत्व देख रहे हैं इसलिए मान का नंबर पहले है। तो यहाँ विसंयोजना के बाद संयोजना हुई है, तो यहाँ नया बंधा है, तो नया बंधने वाले में भी मान का अनुभव कम ही बंधेगा, पहले से हमने देखा था। तो यहाँ अनंतानुबंधी मान का जघन्य अनुभाग विन्यास यद्यपि नवक बंध रूप है, और जहां से सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का प्रारंभ होता है वहीं से इसका प्रारंभ हुआ है, तो भी मिथ्यात्व के जघन्य स्पर्धक से लेकर उसके ऊपर भी अनंत स्पर्धकों तक यह पाया जाता है, तथा इसका घात भी नहीं हुआ है इसलिए यह अनंत गुना है, यह सिद्ध होता है। क्या कहना चाहते हैं? ये मिथ्यात्व की बात है, ये मिथ्यात्व का जघन्य में जघन्य, उसके नीचे सम्यक मिथ्यात्व है। जैसे हमने ऊपर देखा था मिथ्यात्व का ज्यादा है, फिर अनंतानुबंधी लोभ का है, फिर मान का वगैरह वगैरह है, माया का, क्रोध का, मान का। अभी जघन्य की ओर बात करें, जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य है उसके ऊपर जाके यहाँ पर अनंतानुबंधी मान का जघन्य है। फिर पढ़ना देखो, अनंतानुबंधी मान का जघन्य अनुभाग विन्यास यद्यपि नवक बंध रूप है, और जहां से सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का प्रारंभ होता है वहीं से इसका प्रारंभ हुआ है, तो भी मिथ्यात्व के जघन्य स्पर्धक से लेकर उसके ऊपर भी अनंत स्पर्धकों तक यह पाया जाता है, तथा इसका घात भी नहीं हुआ है इसलिए अनंत गुणा है, यह सिद्ध होगा। यानी मिथ्यात्व के जघन्य स्पर्धक से भी ये ऊपर है, यानी इसका अधिक है, और सम्यक मिथ्यात्व का तो उत्कृष्ट भी यहाँ है, जघन्य तो और नीचे चला जाएगा उसका, तो इससे ये अनंत गुणा सिद्ध होता है। अभी नया बंधा हुआ है और जघन्य में जघन्य परिणाम से जघन्य भी बंधा है, फिर भी वो सम्यक मिथ्यात्व से ज्यादा ही होगा। क्रोधस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी क्रोध का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है, क्योंकि यह प्रकृति विशेष है। तो कितना अधिक है? तत्प्रायोग्य अनंत स्पर्धक प्रमाण अधिक है, फिर भी वो डबल नहीं है तो विशेष अधिक कहेंगे। माया ये जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी माया का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। 10 हो गए ना। कितना अधिक है? अनंत स्पर्धक मात्र अधिक है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। उससे अनंतानुबंधी लोभ का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। ऊपर रह गया लोभस्य, हमेशा लोहस्य कहते हैं ना, लोभस्य कोहस्य कहते हैं। लोभस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषाही हो, उससे अनंतानुबंधी लोभ का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। यहाँ पर भी जो विशेष का प्रमाण है उसका निर्देश अनंतर पूर्वक किया ही है, यानी कितना है तो अनंत स्पर्धक अधिक है, फिर भी वो विशेष अधिक है। हस्यस्य जहन अनुभाग संकमो अनंत गुणो,
ये हास्य का तो आठवें गुण स्थान के अंत में नहीं, हास्य का तो अनिवृत्तिकरण में नाश होता है, जघन्य अनुभाग वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे तो कितने अनुभाग कांडक हो गए,
वो नीचे है ना। हास्यादि का तो अंतर करने के पहले हो जाता है ना, इसका कब होता है? अंतर के बाद ही होता है, इसके साथ होता है ना, वेद के साथ।
अंतर के बाद ना, अधिवृत्तिकरण में होता है ना।
उससे हास्य का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है। अभी इतना पढ़कर फिर बाकी का कल पढ़ेंगे हम, क्योंकि अनंतानुबंधी लोभ का जघन्य अनुभाग संक्रम नवक बंध रूप है। ये आपके प्रश्न का उत्तर।
अच्छा, और ये
जघन्य परिणाम से नया बंधा हुआ है और इसका प्राचीन सत्ता रूप है, क्योंकि उसका बंध कब हुआ था?
आठवें गुण स्थान के अंत में,
तो वो प्राचीन है। और ये कैसा है अभी?
और ये तो सत्ता में से नष्ट हो गया था और जघन्य रूप से
बंध हुआ है। अभी जघन्य परिणाम से जघन्य बंध हुआ है, इसलिए इसके अनंत गुणे सिद्ध होने में कोई विरोध नहीं आता। यही रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तफनो सदा लेतो।
दोषी से